ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं सीमा शर्मा। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। आगामी चैत 25 से 30 गते तक एकता महाधिवेशन करने का नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा स्थायी कमेटी बैठक का निर्णय। एमसीसी किया जाएगा परिमार्जन सहित पारित। काठमांडू घाटी में 696 समेत नेपाल में आज 1454 लोगों में पाया गया कोरोना वायरस का संक्रमण। सरकारी स्कॉलरशिप से अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके चिकित्सकों को संपर्क में आने का स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने किया आग्रह। और विश्वभर में 2,04,00,000 से अधिक लोग हुए कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त। अब समाचार विस्तार से। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा की जारी स्थायी कमेटी की बैठक, पार्टी की एकता महाधिवेशन आगामी चैत 25 से 30 गते तक काठमांडू में आयोजन करने का निर्णय के साथ संपन्न हुई है। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकार संचालन करने की जिम्मेदारी देने और दूसरे अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड को कार्यकारी अधिकार देने सहित पार्टी संचालन में ध्यान केन्द्रित करने लगायत के प्रस्तावों को पारित करते हुए बैठक आज संपन्न हुई है। आज प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में हुई बैठक में अध्यक्ष द्वय द्वारा पेश किए प्रस्तावों के ऊपर विचार विमर्श करने के दौरान नेताओं द्वारा दिए गए सुझावों को समेटकर प्रस्ताव पारित की गई। ये जानकारी नेकपा के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ ने दी। बैठक ने अब पार्टी को विधि और पद्धति से आगे बढ़ाने के साथ ही सरकार के दैनिक कार्यों में पार्टी की ओर से किसी भी तरह कोई हस्तक्षेप न करने का निर्णय किया है। वहीं आधारभूत विषयों पर पार्टी में परामर्श करने की निर्णय लेने की बात बैठक में हुई, ये जानकारी प्रवक्ता श्रेष्ठ ने दी। बैठक में मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन एमसीसी को संशोधन और परिमार्जन कर अनुमोदन करने का भी निर्णय किया है। बैठक में वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ समेत 13 नेताओं ने अपनी अपनी धारणाएं रखी थी। नेपाल में आज 1454 लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया है। इनमें से 696 सिर्फ काठमांडू घाटी के हैं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता प्राध्यापक डॉ जागेश्वर गौतम से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 10,701 लोगों का पीसीआर परीक्षण किया गया था, जिनमें से 1454 लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया। मंत्रालय के मुताबिक अब कोरोना वायरस संक्रमण का केंद्र काठमांडू बन चुका है, जहां 620 और भक्तपुर ललितपुर में 38-38 लोग कर घाटी में ही आज 696 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इसी तरह आज 5 लोगों की वायरस के संक्रमण से मौत होने के बाद नेपाल में वायरस के संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 322 पहुंची है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने सरकारी स्कॉलरशिप में अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके चिकित्सकों को मंत्रालय के संपर्क में आने का आग्रह किया है। मंत्रालय ने सरकारी स्वामित्व के प्रतिष्ठान, परिषद, मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य संस्थाओं से स्कॉलरशिप लेकर अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके चिकित्सकों को 5 दिनों के अंदर संपर्क में आने का आग्रह किया है। ये जानकारी मंत्रालय के नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा के वरिष्ठ मेडिकल सुपरिन्टेंडेंट डॉ पवन जंग राय मांझी ने दी। जिला प्रशासन कार्यालय काठमांडू ने कुछ सीमित परीक्षा संचालन करने की बात कही है। काठमांडू जिला प्रशासन ने आज एक विज्ञप्ति जारी करते हुए अति आवश्यक व्यावसायिक अंग्रेजी परीक्षा टोफेल, आईएल्स, जीआरई, जीएलएफडब्ल्यू, जीमैट लगायत की भाषा परीक्षा संचालन करने की बात कही है। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय द्वारा जारी परीक्षा संचालन कार्यविधि 2077 के मुताबिक परीक्षा संचालन करने की बात कही गई है। नेपाली राजदूत ओमान ने अपने 5वें उड़ान के जरिए ओमान में रहे 165 नेपाली को आज नेपाल भेजा है। यात्रु तथा चालक दल के सदस्यों का पीसीआर रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद 165 नेपाली को नेपाल भेजा गया, ये जानकारी राजदूतावास ने दी। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब वक्त है व्यावसायिक विश्राम का।
ल्यान्डलाइन फोनमा समस्या छ।
1498 फोन गर्नुस्।
समस्या पोस्टपेडमा नि आयो।
1498 फोन गर्नुस्।
ओहो सम्झे, प्रिपेडको पुक नम्बर पनि चाहिएको थियो।
त्यसको लागि पनि 1498 फोन गर्नुस्।
नेपाल टेलिकमको जीएसएम सीडीएमए मोबाइल तथा ल्यान्डलाइनमा कुनै पनि समस्या आएमा जे सोध्न मन छ 1498 फोन गरेर सोध्नुहोस्। यो नम्बरमा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्रालय ने जमीन का प्लॉटिंग पूर्ण रूप से खुला न करने की बात स्पष्ट करते हुए कहा कि व्यवस्थित और कानून के मुताबिक ही अब प्लॉटिंग की जाएगा। आज मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सर्वोच्च अदालत से कानून बनाकर व्यवस्थित करने के लिए जारी की गई आदेश और अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के सुझाव के आधार पर किताकाट संबंधी कार्य को भू उपयोग ऐन, स्थानीय सरकार संचालन ऐन, लगायतों को आधार मानकर किताकाट और व्यवस्थित के साथ कानून बमोजिम मात्र बनाने की प्रयास की गई है। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री पार्वत गुरुंग ने कहा कि राष्ट्रीय संकट व्यवस्थापन में सभी नेपाली को एकजुट होना चाहिए। आज से शुरू हुए नेपाल जेसिस वर्चुअल क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने के दौरान उनका जोर युवा एकता पर था। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली के नारा को साकार करने के लिए नेपाल जैसी सहयात्री साबित होने की बात बताते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं के सहजीकरण और एकता से मौजूदा राष्ट्रीय संकट का समाधान किया जा सकता है। सरकार ने बीते आर्थिक वर्ष में देश भर के 407 खाने को उत्खनन तथा खोज तलाश की अनुमति दी है। खाने तथा भूगर्भ विभाग ने आर्थिक वर्ष 2076-77 में देश भर के विभिन्न स्थानों का 407 खाने उत्खनन तथा खोज तलाश के लिए स्वदेशी तथा विदेशी कंपनी को अनुमति दिया है। तन्हू और डोटी में आज हुए जीप हादसा में 30 लोग घायल हुए हैं। तन्हू के दुलगौड़ा से ब्यागन की ओर जा रही जीप शुक्ला गंडकी नगर पालिका की हटिया में दुर्घटनाग्रस्त होने से 18 और डोटी जिला पूर्वी चौकी गांव पालिका 1 शांतिनगर में हुए जीप हादसे में 12 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की अवस्था गंभीर है। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय डोटी के प्रहरी निरीक्षक कर्ण बहादुर बोहरा ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दुनियाभर में कोरोना वायरस से अब तक 2,84,48,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 2,04,44,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं 9,15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई है। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका सबसे पहले स्थान पर है, जहां 65,94,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 1,96,000 से अधिक की मौत हो चुकी है। इसी तरह भारत में 46,06,000 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 76,000 से अधिक की मौत हो चुकी है। इसी तरह ब्राजील में 42,39,000 से अधिक संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 1,29,000 से अधिक लोगों की जान चली गई है। इसी तरह रूस में 10,51,000 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 18,000 से अधिक की यहां मौत हो चुकी है। इसी तरह पेरू में 7,10,000 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 30,000 से अधिक की मौत हो चुकी है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर से। आगामी चैत 25 से 30 गते तक एकता महाधिवेशन करने का नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा स्थायी कमेटी बैठक का निर्णय। एमसीसी किया जाएगा परिमार्जन सहित पारित। काठमांडू घाटी में 696 समेत नेपाल में आज 1454 लोगों में पाया गया कोरोना वायरस का संक्रमण। सरकारी स्कॉलरशिप में अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके चिकित्सकों को संपर्क में आने का स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने किया आग्रह। और विश्वभर में 2,04,00,000 से अधिक लोग हुए कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से कल तक के लिए दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभरात्रि।